याद रखें, अल्लाह के रास्ते में थकन भी होगी, कभी कभी मुश्किल भी होगी, लेकिन जो चलता रहेगा ना, तो अल्लाह ताला वो वहां पे अजर देगा कि इंसान चाहेगा कि काश मैं अपनी सारी जिंदगी इसी में गुजार देता। ये तकलीफें कोई याद थोड़ी आनी है, ये भूख या प्यास थोड़ी याद रहनी है वहां पे। वहां पे तो जब वो अजर देखेंगे तो इनमें से कोई एक भी नहीं याद रहनी, सारा ही अजर ही अजर है, अजर ही अजर। आप बैठे, आप उठे, आप खड़े हुए, आप चले, आप निकले, आप गाड़ी में बैठे, आपने गाड़ी चलाई, आपने आपने भूख बर्दाश्त की, आपने प्यास बर्दाश्त की, आपने गर्मी बर्दाश्त की, आपने थकन बर्दाश्त की, सारा कुछ इबादत में लिखा जा रहा है। कौन सा और ऐसा कोई काम होगा पता है, हर चीज पे इबादत बन गई। फिर क्यों घबराते हैं इसे, फिर क्यों सोचते हैं कि मेरे कन्वीनियंस हो तो फिर मैं काम करूं, सूटेबल हालात होंगे तो काम करूंगी। हम तो इस काम को भी पिकनिक समझ लेते हैं कि पता नहीं वहां पे खाने पीने को मिलेगा तो जाएंगे हम, पता नहीं वहां पे कुछ हमें यानी कोई शाबाशी होगी तो करेंगे। अब तो माशाल्लाह हमारे सब ऐसे नहीं है, सब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये प्रूव किया है कि वाकई वो अल्लाह के रास्ते में कैसे निकल के, वो जाहिर है उनको भी थकन हुई होगी, उनके भी घर बार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी घर छोड़े निकले और वो अल्लाह के रास्ते में उन्होंने दावा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहती हूँ शाबाश है ऐसे लोगों के ऊपर, उन्होंने अपना माल भी खर्च किया, वो खड़े भी रहे, उन्होंने लोगों को भी दावत दी। ये कोई, वो जब से घर से निकले और जब तक वापस घर आए, उनकी हर चीज अल्लाह के रास्ते में, उनके कोई चीज जाया नहीं, बस नियत में इखलास होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये तो अपने लिए ऑनर समझा करें कि मेरे अल्लाह ने मुझे उठा दिया, वरना क्या वो घर के काम अरसाए दराज से करते जा रहे हैं, अभी भी करते रहेंगे, कौन सी कोई ऐसी चेंज आ जानी है, कब से कर ही रहे हैं ना, रोज ही होते हैं घर के काम, रोज ही हंडियां भी पकती हैं, रोज ही सफाइयां भी होती हैं, रोज ही कपड़े भी धुलते हैं, रोज बर्तन धुलते हैं, कभी अल्लाह के लिए भी वक्त निकाले। लोग कहते हैं लो तो क्या करें, हम सारे काम ही छोड़ दें। हाँ तो अल्लाह के काम को छोड़ दें, वो ना छोड़े, अल्लाह के काम को छोड़ दें। और कई हैं जो इतने ही मसरूफ हैं कि वो कभी ये सोचते ही नहीं कि अल्लाह के रास्ते में निकलना भी कोई चीज होती है, वो भी कोई काम है जो मुझे करना है, नहीं वो कहते हैं और करते रहे, तो फिर कयामत के दिन वो और जो कर रहे थे ना, वो अजर भी सारे ले जाएंगे। ये ना हो कि हम उस दिन देखते ही रह जाए। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में, कोई रेड कारपेट नहीं बिछ जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर उनको इतना इशू ना बना लें अपने लिए। जब आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर इशू बनाने की क्या बात है, फिर तो आपको अल्लाह ताला ने साथ वादा कर दिया, और फिर इसके ऊपर रोने की जरूरत नहीं, और ना ही किसी के ऊपर एहसान करने की जरूरत है। देखो मैंने अपना आराम छोड़ा, देखे मुझे तो ऐसे हो गया, देखे मैं तो घर से निकली, देखे मेरा तो कितना टाइम इसके अंदर चला गया। याद रखें आप दुनिया में किसी के लिए कोई काम करेंगे ना, पता नहीं वो आपको कभी उसकी कदर करता भी है कि नहीं करता। अक्सर तो हम यही शिकायत करते हैं कि हमने तो इतना किया, देखो क्या मिला हमें, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला के हाँ पूरा पूरा अजर है। हम इधर फिर भी मरते फिरते हैं, लोगों के लिए भागते फिरते हैं, काम करते फिरते हैं, मगर वही लोग जब फिर हमसे कोई शिकायत गिले शिकवे करते हैं तो फिर हमारे दिल खराब होते हैं। अल्लाह के लिए एक कि कभी करके देखें, उसके लिए भाग दौड़ करके देखें, उसके लिए खुद को खपा के देखें, वो क्या देता है। और अल्लाह ताला ने देख लिया है हर एक की मेहनत को, और जो कर सकता है और नहीं कर रहा उसको भी, और जो मुश्किलों में पढ़ पढ़ के करता है उसको भी। और कभी भी इसको अपने लिए बोझ ना समझ के करें, कभी ना बोझ समझ के करें ये, कभी इसको मुसीबत ना समझे अपने लिए। उसी वक्त सोचा करें कि सहाबा कराम हमसे बहुत ऊपर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या ही बात है, आपके मकाम और मर्तबे की क्या ही बात है। उन्होंने अगर इतनी मुसीबतें और इतनी मुशक्कतें झेली तो मुझे क्या है, मैं आराम से इसी में बैठी रहूं। तो दीन के काम में जरा जरा सी बातों के ऊपर ना ऐसे डिसहार्टनिंग बातें ना किया करें, हम थक गए हैं, हमें ऐसे हो गया, हमें ये हो गया, हमें पता नहीं कितनी परेशानी हो गई, कितनी मुश्किल है ये, इस तरह दूसरे लोग भी डिसहार्ट हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। कभी शायद हम लोगों ने डाइटिंग के लिए तो अपने आप को भूखा प्यासा रखा हो, और कितने लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में भूख बर्दाश्त की हो। कभी हमने शायद शादियों के लिए, शॉपिंगों के लिए तो थकावटें बर्दाश्त की हो, मगर अल्लाह के रास्ते में कितने हैं जिन्होंने थकावट बर्दाश्त की हो। अल्लाह अकबर। मा कान अल मुमिनून लियनफिरू काफा, नहीं है मोमिनों के लिए कि वो निकल पड़े सारे के सारे। अच्छा हुआ क्या था, जब ये इतनी बड़ी बात हो गई ना कि सहाबा ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी एक परेशानी हुई उन लोगों को जो पीछे रह गए, और कितना उनके सफर करना पड़ा उनको 50 डेज, और फिर इस ये कितनी बड़ी बात बन गई क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें उतार दी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो हम किसी जिहाद से पीछे नहीं हटेंगे, हम सारे ही निकलेंगे। तो बता दिया गया कि नहीं, सिर्फ जो तबूक था ना, मैंने बताया कि वहां पे फर्ज ऐन था सबका निकलना, इसके बाद आइंदा के लिए क्या बता दिया गया, फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया क्या होता है, एक सोसाइटी में बाज लोग कर ले उसको तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। जैसे फर्ज किफाया की मिसाल है नमाज जनाजा, अगर कोई एक भी ना किसी मुसलमान का पढ़े तो सारे गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर थोड़े पढ़ लेंगे तो सबकी तरफ से हो गया, एक फर्ज अदा हो गया। यानी मामा कान अल मुमिनून लिया फिर काफा, तो सारे के सारे ना निकल पड़े। जाहिर है इंसान के दुनिया के काम भी हैं, कारोबार भी हैं, पीछे भी बच्चे औरतें भी हैं। फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकते, क्यों नहीं ऐसे होता कि हर फिरके से निकले, हर ग्रो में से, मिनहुम तौइफतन एक जमात, यानी हर एक जगह या हर एक नेबरहुड है या हर एक कम्युनिटी है, उसमें से कुछ लोग निकले, एक जमात निकले, और वो क्या करे, लियतफक्कहु फिद्दीन, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करे, और नंबर टू क्या करे, वली युंजीरु कौमहुम, और वो इंतजार करे अपनी कौम में, इजा रजाउ इलैहिम, जब वो लौटे उनकी तरफ, जब वहां से इल्म लेके वापस आए तो अपनी कौम को इंतजार करें कि इससे क्या फायदा होगा, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो बचे, ताकि वो भी बच जाए गुनाहों से। तो यहाँ पे बता दिया गया आइंदा के लिए एक लाए हमल दे दिया गया कि अब सब लोगों को जरूरत नहीं है कि सारे ही निकल पड़े, सारे ही जिहाद के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि ये इतनी सख्त आयतें आई थी, तो अब हम क्या करें, नहीं, अब क्या है, अब आइंदा के लिए एक जमात तो जिहाद के लिए जाए, लड़ने के लिए जाए, मगर बाकी लोग में से एक जमात उठे और वो जाके दीन की समझ बूझ हासिल करे। क्यों समझ बूझ हासिल करे, ताकि अपनी कौम को आके इंतजार करे। यानी अब एक जिहाद की एक सूरत तो ये है कि जाके अल्लाह के रास्ते में लड़ना, और एक जिहाद की ये भी सूरत है कि इंसान दीन की तालीम लेके और अपनी कम्युनिटी को संवारे, अपनी कम्युनिटी के में काम करे। और इसीलिए मुफस्सिरीन ने ये भी इस बारे में कहा है कि हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा फर्द जरूर होना चाहिए कि जो जाए और जाके ये दीन की में स्पेशलाइजेशन हासिल करे। तफक्कुह का क्या माना है, देखिए, एक वो है जो कंपलसरी इल्म हासिल करना, जो फर्ज आईन है, जो सबके लिए जरूरी है, और वो कौन सा है कि जब इंसान अपने हलाल हराम का, अपनी यानी अपनी जो बेसिक इल्म है, अपनी फराइज का, अपनी वाजिबात का, हकूक का, इसका सब का इल्म हासिल करे,
अपनी माशरत का इल्म हासिल करें कुरान और हदीस से, लेकिन एक है वो जो डेप्थ में उतरना, बहुत सारी किताबें पढ़ना, एक फकीर बनना, ये बेसिक बेसिक चीजों से नहीं है, ये बेसिक इल्म वो है जो आप अभी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन डेप्थ इल्म की बात की जा रही है कि इल्म में स्पेशलाइजेशन रखना जरूरी है, कि कोई ना कोई जरूर, सारे इल्म लेने के लिए भी, ऐसी स्पेशलाइजेशन के लिए भी सारे नहीं निकल जाएंगे, सब नहीं चले जाएंगे, मगर कुछ एक ग्रुप जरूर होना चाहिए, एक एक ताइफा जरूर होना चाहिए जो ये काम करे। यहाँ पे इल्म की फजीलत का भी हमें पता चलता है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तलबे इल्म जो है वो फर्ज है, ये भी एक फरीजा है, हर मुसलमान के ऊपर एक फर्ज है। तो वो बेसिक नॉलेज और इससे भी आगे बढ़ के फिर ये स्पेशलाइजेशन है। अब वो लोग जब आएंगे तो फिर वो अपने खानदानों को, अपनी कम्युनिटी को संवारेंगे, उनके अंदर इंतजार करेंगे, उनको सही बात बताएंगे, क्योंकि सारे तो पढ़ने के लिए नहीं निकल सकते थे, किसी की कोई मसरूफियत, किसी का कोई तिजारत कारोबार का जॉब, ये सब चीजें थी, लेकिन कुछ लोग एक उन्होंने समझे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जो जाके स्पेशलाइजेशन लेकर आए। अब वो उनको पता है विरासत के उलूम का पता है, उनको जकात के मसाइल का पता है, उनको और शरीय अहकामात जो मुश्किल मुश्किल वाले हैं उन सारों की उनको एक्सपर्टीज हासिल है, और वो आके आके इंतजार करते हैं। और याद रखें, अब बाज दफा हम ये समझते हैं कि दीन का इल्म हासिल करने का मतलब ये है कि बस हमें नमाज रोजा आ जाए, और फिर इसीलिए सारे लोग कहते हैं तो वो तो हमें पहले ही आता है, पहले ही आता है तो इसलिए हमें तो जरूरत ही नहीं है कि हम दीन के इल्म के लिए निकले। हालांकि दीन का इल्म सिर्फ फराइज या फिक को मालूम करना नहीं है, बल्कि कैसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, कैसे अल्लाह वाले बन जाना, और कैसे लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना, कैसे अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ ये नहीं कि बस आप ये कहें कि बस ये चीजें, ये 1 2 3 ये चीज मैं सीख के आ जाओ, बस मैंने दीन का इल्म ले लिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये बड़ी वास्ट चीज है, तफक्कुफ दीन, और फिर दीन का बेसिक इल्म भी बड़ी बहुत बड़ी बात है कि आप कुराने पाक की तालीम हासिल करें, फिर अपने खानदानों के अंदर उसको बताएं, जितनी भी आपके पास इल्म है। एक तो है ना बहुत स्पेशलाइजेशन लेना, तफक्कुफ दीन है जिसमें मेहनत मुशक्कत के साथ इल्म हासिल करना है, मैस्ट्री करना इसके अंदर हासिल, और एक है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं इस हद तक भी अगर आप इल्म ले लेते हैं, और आज तो अपने शहरों से निकल के कहीं जाने की जरूरत नहीं, मगर डेडिकेशन की जरूरत है कि आप डेडिकेटेड हो इसके लिए, आप अपने आप को फारिग करें इसके लिए, आप अपने और धंधों से अपने आप को थोड़ा सा अलग करें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये सोचें कि बस ये भी सारा मुझे आ जाए और बाकी भी मेरी जो पहले की मसरूफियतें उसी तरह चलती है। आज इस मैदान के अंदर ना मेहनत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हाँ आप पीएचडी किसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आपको कंप्यूटर के बड़े माहिर बन रहे हैं, तो उसके अंदर मेहनत सबको समझ आती है, इसके अंदर भी कोई मेहनत होती है, इस पे लोग हैरान होते हैं, इस पे लोग कहते हैं ये कौन सा काम है, ये क्या तुमने काम पकड़ लिया, यानी ये तो बिल्कुल फजूल काम, इसको जानते ये इसकी जरूरत ही नहीं है। हालांकि कम्युनिटी या खानदान चल ही नहीं सकते दीन के ऊपर अगर ऐसे लोग ना हो जिनके पास दीन का इल्म, कैसे चलेंगे, क्या अमल करेंगे जब आपको इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो हम जो ये कर रहे हैं ना, जो हम बैठे हुए हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम क्या कर रहे हैं बताएं। आप कहेंगे हम पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, इसको दूसरे अल्फाज में बताऊं आपको, कुरान तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम अपने घर का रास्ता मालूम कर रहे हैं। दरअसल हमारा घर जन्नत है, हम अपने घर जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। इसके बाद जब हमें ये रास्ता तलाश हमने कर लिया, हमें रास्ते का समझ बूझ हो गई, तो फिर हम उस रास्ते पे चलेंगे, फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हम अपने घर का रास्ता मालूम कर रहे हैं। अब जिसको घर का रास्ता ही ना मालूम हो गया वो भटक जाएगा। लिहाजा बहुत जरूरी है ये दीन का इल्म लेना। और देखें, याद रखिए, इसके अंदर कभी अपनी ये ना करें कि मैं जो सर्टिफिकेट मिल जाए बस। आप सर्टिफिकेट के लिए ना इल्म ले, आप अपने अंदर चेंज के लिए इल्म ले, आप ये रास्ता जानने के लिए इल्म ले कि मैंने अपने घर जाना है। लॉस्ट आदमी कोई अच्छा होता? कोई लॉस्ट नहीं होना चाहता। जिस जिसको घर जाने का रास्ता चाहिए वो ये इल्म हासिल करे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के वक्त में ना दो भाई थे। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहता था, इल्म लेता था, दूसरा काम काज करता था, यानी मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन जो वो जो मेहनत करने वाला कमाने वाला भाई था ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, शिकायत करने लगा कि देखो जी मेरा भाई है, बस इसको यही है, बस पढ़ते रहना, इल्म लेना, ये ना कमाने में मेरा हाथ बढ़ाता है ना कुछ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया था? शायद किसी के हस्बैंड भी उसको ये कहते हो कि औरों की बीवियां तो जॉब्स कर रही हैं, ये कर रही हैं, और तुम इस पढ़ाई में लगी हुई, तो तुम भी ये छोड़ो और कोई जॉब स्टार्ट करो। तो आपने फरमाया उसकी शिकायत पे कि शायद अल्लाह तुझे इसी की वजह से रिस्क दे रहा है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए कभी अपने इस पढ़ने को फजूल ना समझे, फालतू ना समझे, ये भी मैं किसमें पढ़ गई, लोग इतनी कमाइयां कर रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ घर पे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते में ये वक्त दे रहे हैं अपना। तो इससे यहाँ पे इल्म की फजीलत की बात पता चलती है आपको। आप चाहे घर से निकलें या घर में बैठ के आप ये इल्म ले रहे हैं। घर से निकलें फिर तो हर हर कदम, हर हर पत्थर, हजर, जो भी दरख्त, जो भी है, वो जहां से भी आप गुजरेंगे सब लिखा जा रहा है, सब सब आपके नामा अमाल के अंदर नेकियों को बढ़ा रहा है। तो ये तो कंफर्म है ना, देखिए यहाँ पे लिख दिया कंफर्म है। बाकी कामों के अंदर हो सकता है हम कहते हैं पता नहीं, ये पता नहीं ये सही भी है कि नहीं सही है, पता नहीं ये करूं कि नहीं करूं, या कर लेते हैं फिर उसके अंदर कितना है कितना नहीं, उसके अंदर कितने फालतू बातें कर ली, कितनी और चीजें कर ली। अरे ये तो खालिसतन एक नेकी का काम है, ये खालिस अल्लाह के लिए वक्त है। अब हाँ, आपने मगर इस वक्त के अंदर चोरी नहीं करनी। यानी चोरी क्या कि अल्लाह के वक्त में से चोर दरवाजे खोले में कभी किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी फोन आ गया, कभी उधर चले गए, कभी किचन देख लिया, कभी फलां कर लिया, तो ये क्या अल्लाह के लिए वक्त हुआ? ये तो आप अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाल रहे, तो बीच के अंदर मिलावटें की हुई हैं। ठीक है, और अब से फिर इंशाल्लाह टेस्ट देने से भी कोई ना घबराए। वो टेस्ट के लिए आप जितनी मुशक्कत करेंगे वो नहीं लिखी जा रही, जितने मिनट आप बैठे हैं, जितने सेकंड आप बैठे हैं, जितनी आपको थकन हो रही है, जितनी आपको परेशानी हो रही है, देख लें कि ये तो अल्लाह ताला के पास जाके ही पता चलेगा कि जिसने इस रास्ते में जो कुर्बानी दी उसका सिला क्या अल्लाह ताला देता, इसका अल्लाह ने वादा कर लिया। और ये इल्म के लिए भी कोई कुर्बानी देना सीखे, ये इसी तरह नहीं आ जाता कि आप सोचेंगे कुछ भी ना करें और बस मेरे दिमाग में खुद ही पोरे हो जाए, और मैं मेहनत भी ना करूं, और मुझे कुछ याद भी ना करना पड़े, और मुझे टेस्ट भी ना लिया जाए, बस चलते फिरते कहीं सुन लिया करूं, और कोई एक बात कान में पड़ी और चार बातें वैसे ही निकल गई, और फिर उसके बाद कोई आधा सुना आधा नहीं सुना तो बस हो गया। ये बात नहीं है, आपको फिर इल्म आएगा नहीं, ये अंदर रासिख नहीं होगा। याद रखें, अगर इस तरह की आप क्लासेस लेते हैं ना तो फिर ये फायदा नहीं दे सकेगा आपको। ठीक है, अगर आपने वाकई इससे अपना घर का रास्ता पता करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, यकसुई आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। ठीक है, वैसे दूसरे कामों को लिए तो ये बातें बताने की जरूरत ही नहीं होती ना। आप अपने बच्चों को कहते हैं बेटा चलते फिरते क्लास ले लिया करना, बेटा कोई बात नहीं, तुम गाड़ी चलाते चलाते क्लास ले लिया करना, कोई बात नहीं है।
बेटा कोई बात नहीं, तुम और घर के काम करते करते तुम क्लास ले लिया करो, बेटियों को हमने कभी ये सिखाया हो, कभी बच्चों को हमने ये सलाह दी हो, वो सब हमें पता है कि बच्चे खामोश, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, दरवाजा बंद रखो, कोई शोर ना करे, हमें पता है कि उसको फोकस चाहिए, हमें पता है कि वो एक बड़ा जहन का काम है, बड़ी हमें उसमें समझ है, लेकिन हाँ कुरान का सुनना तो ऐसे ही है बस, या तो गाड़ियों में सुने या बर्तन धोते हुए सुने, तो सारा इल्म हमें आ जाना है, काफी हो गया, हमने निकाल लिया अपना अल्लाह के लिए वक्त, निकाल लिया अल्लाह के रास्ते में। कहाँ है आज वो लोग जो इस दीन को कन्वीनियंस के लेवल पे ना ले, कुर्बानी के लेवल पे ले, जैसे सहाबा ने लिया था, कन्वीनियंस के लेवल पे तो नहीं उन्होंने दीन लिया था, कुर्बानी के लेवल पे लिया था। देख ले फिर अल्लाह ताला ने फिर उनकी कैसी जबरदस्त कदरदानी भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिसके कदम भी गर्द आलूद हो जाते ना, कदमों पे मिट्टी पड़ जाती, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकला था, निकलेंगे तो जाहिर है मिट्टी भी पड़ेगी, कोई डस्ट भी होगी, कोई पोल्यूशन भी होगी, तो फरमाया जिसके कदम भी गर्द आलूद हो गए, अल्लाह ताला उसके लिए दोजख को हराम कर देगा, बुखारी की हदीस है। अल्लाह अकबर, वो तो इतना कदरदान है, आप करके तो देखें, कुछ कुछ लगा के तो देखें अल्लाह के रास्ते में। और फिर इंतजार अपनी कौम को, ये इंतजार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ के खुद ही नहीं बैठ गए, अपने लोगों को, जैसे अपना खानदान है, अपनी कम्युनिटी है, अपने करीब के लोग है, उनके अंदर उनको वॉर्न करना, ये नहीं बस मैंने पढ़ लिया, मैं अब अपनी किताबों के अंदर ही जुटी रहूं, बस ये हो गया, काफी हो गया, मेरे सर्टिफिकेट मिल गया, उसको सजा दिया। आप अपने जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके खानदान वाले, आपके अपने बच्चे, आपके इर्द गिर्द वाले, उनको इंतजार करना जरूरी है, वॉर्न करना कि एक आखरत का दिन है, हमें जवाबदेही करनी है, ताकि वो भी बच जाएं, वो भी डर जाएं, वो भी संभल जाएं। हजर का मैंने बताया ना माना, डरना, बचना, खौफजदा करने वाली चीजों से बचना, वो भी बच जाए, ये होना चाहिए एम, खुद भी बचे और उनको भी कहें, ये ना हो कि किसी को पता ही ना चले इनके पास कोई इल्म है, किसी को पता ही ना चले इन्होंने कुछ सीखा है, और जिस वक्त हम लोगों की मजलिस में बैठे हैं, अपने दोस्त अहबाब में बैठे हैं, तो जो पढ़ा हुआ है दीन और जो नहीं पढ़ा हुआ, सभी बराबर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। आपके जो इल्म है ना, वो आपकी बातों में, आपके तौर तरीकों में, आपके उठने बैठने में, आपके जो जो सोच में, आपके लिबास में, आपके रहन सहन में, सब में उसकी झलक होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसने कुछ इल्म लिया है। ये नहीं कि मैं अपने इल्म की धाक बिठाने के लिए बस हदीसें याद कर लूं, बस मैं कोट करती जाऊं और मैं सोचूं कि भाई देखो आयत नंबर फलां का ये, आयत नंबर फलां में ये नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो बताए कि ये इल्म वाली है, छिछोरे ना बन जाया करें, जब वो किसी ऐसे के साथ बैठे वैसे ही बन के बैठ गए, वहां पे नाच रहे हैं, वहां पे आपे से बाहर हो रहे हैं, वहां पे गा रहे हैं, यहाँ कहीं पे झगड़ा करने खड़े हुए हैं, यहाँ पे कहीं आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं, कहीं पे बहसें करने लगे हुए हैं, कहीं पे कोई गुस्सा निकाल रहे हैं, कहीं पे ऐसी जाहिलाना बातें कर रहे हैं कि कुछ सोचे कि ये है जो कुरान वाली है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा अपना भी ऐसा किरदार, ऐसा अखलाक, ऐसी पर्सनैलिटी हो कि वाकई पता चले कि ये वाकई अल्लाह से डरने वाली है, और फिर हम दूसरों को भी बताएं, ठीक है, फिर दूसरों को भी इंतजार करें, तभी कर सकेंगे ना जब हमने खुद अपने आप को कुछ संभाला होगा, अगर खुद ही हम आउट ऑफ कंट्रोल ही रहते हैं हर वक्त, हमें ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल, ना अपनी जुबान पे कंट्रोल, ना अपने तौर तरीकों पे कंट्रोल, कौन हमारी बात सुनेगा, फिर हम कहेंगे हम कोई बात ही नहीं सुनता, बात कैसे सुने, वो कहता है इसने कौन सा कोई अपने आप को क्या इसके अंदर चेंज आया जो हम भी क्या फर्क है हमारे और इसके अंदर। तो बाज दफा हम अपने इदारे को भी बदनाम करते हैं जब हम बस ऐसा बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का कुछ बात चार सुनी और 10 नहीं सुनी, और उसके बाद बस ऐसा वैसा इल्म लेके और फिर उसके बाद हम कहीं लोगों में बैठते हैं, तो वो कहते हैं ये है जो दीन का इल्म हासिल करने वाले। हम अपने आप को भी बुरा करते हैं और अपने इदारे को भी बदनाम करते हैं, अपने दीन का नाम भी खराब करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। वाकई फिर हम इस काबिल भी हो जाएं, इतना सीखें कि फिर अपने इर्द गिर्द वालों में भी बात कर सकें। और इसे ये भी पता चलता है इंतजार करना है, और इंतजार बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। लोगों को तबशीर पसंद होती है, खुशखबरियां सुनाते रहो, इंतजार ना करो, वॉन ना करो, आखिरत के अंजाम से ना डराओ, कयामत की बात ना करो, दुनिया से जाने की बात ना करो, हिसाब किताब की बातें ना करो। आए आप तो बहुत डराते हैं, आज हमारा ये हाल हो गया। हालांकि असल इसका ये बात है कि इंसान को ऐसी ही बातें बतानी चाहिए लोगों को, ताकि वो भी बच जाए। तो अब औरतों को बड़ा ही होता है, देखो आदमियों को तो लड़ने का कहा गया और उनको जिहाद की इतनी फजीलत, और ऐसी बातें बताई गई, हमारे लिए क्या है, हम तो ना लड़ सकते हैं, ना हमारे हमें ये अलाउड है, ना हमें ये हमारे ऊपर कोई फरीजा है, हम क्या करें फिर। तो ये आप दूसरा काम तो कर सकती हैं ना, ये भी एक जिहाद है। ठीक है, जिहाद की। अब यहाँ पे आपको एक और किस्म भी पता चल गई है, या ये लदीना मनो कातिलु लदीना यलूनकुम मिनल कुफार। ए ईमान वालो, कातिलु जंग करो उन लोगों से, यलूनकुम जो करीब हैं तुम्हारे, मिनल कुफार काफरों में से, यानी जब जंग फर्ज हो जाए। ऐसे नहीं है कि जो करीब हैं, अब उठ कोई उठे अपने हमसाए में जाके वहां पे मरने मारना शुरू कर दे, कत्लो गारत शुरू कर दे। देखिए जब इन आयात को ना मिस कोट किया जाता है, कई यूथ को इन आयात को लेके, और फिर उनको समझाया जाता है, देखा कुरान तो ये कह रहा है, चलो तुम निकलो और कहीं जाके फट जाओ। ऐसा नहीं है, जब जंग फर्ज हो गई हो तो तब, मैंने आपको बताया था कि फर्ज फर्ज जब जिहाद हो जाता है तो उसकी तीन सूरतें मैंने आपको बताई थी कि सूरह बकरा में उसकी आयत है, सूरह निसा में, सूरह हज में, पहले बता चुके हैं। अब जब ऐसे फर्ज हो जाए तो फिर क्या करना है, फिर करीब से शुरू करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शुरू की थी जिहाद, भी कैसे शुरू की थी, यानी ये बताया गया कि जंग भी जो है ना, ये भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड चीज है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी काम शुरू कर दे। इस्लाम में ना हर चीज को बड़ा डिसिप्लिन को बड़ी अहमियत दी गई है, कि डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज होके। फिर भी आप देख लें, हम मुसलमान ही सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज कौम है। हालांकि हमारा दीन भी कहते कि किस तरह सिस्टमेटिकली लेके चलने की बात करता है, कि पहले जो लड़ाई होगी वो अपने करीब के काफरों के, पहले जो रुकावटें आपके करीब वालों ने खड़ी की हुई है उनके साथ आप निपटेंगे, उसके बाद आगे की कोई बात हो सकती है। ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखें, पहले आपने कुरैश के अंदर तबलीग की, बल्कि पहले तो अपने खानदान में, बनू हाशिम में, फिर कुरैश में, फिर पूरे मक्का में, फिर आगे आगे चलते चलते फिर आगे कबायल तक गए। और देखिए रोम की तो, उनसे तो जंग करने के लिए बिल्कुल एंड में गए हैं। ऐसे नहीं कि पहले हम उनके साथ जंग करने चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले तवज्जो किसकी तरफ होनी चाहिए, जो करीबी लोग हैं। क्योंकि आप ये भी देखें कि जो करीब के लोग होते हैं ना, वो ही सबसे ज्यादा इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे ज्यादा उसके ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो उनकी इसलाह की सबसे पहले फिक्र होनी चाहिए, पहले उनसे साथ निपटो। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप अपने हमसायों के साथ हुस्ने सलूक ना करें, उनसे लड़ना खड़े के लिए खड़े हो जाएं, या किसी और से कि भाई आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसे काम करते हैं तो आप उनके साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, हमारे कुरान में तो ये है कि जो करीब वाले उनके साथ पहले। नहीं, हर भी काफिर की बात हो रही है, बाकी आपके हमसाए में है कहीं है, उनके साथ अच्छा बिहेव करना जरूरी है। वो हर भी नहीं है, आपके घर कोई मेहमान के तौर पे आ जाए, आपके साथ कोई काम करता है, आपके करीब कोई रहता है, उसके साथ उसने सलूक करें। तो वल यजी तू फीकुम गिलजा, और चाहिए कि वो पाए आपके अंदर सख्ती। सख्ती का मतलब क्या, उनके साथ लड़ने शुरू हो जाओ, उनके साथ तू तू मैं करें। नहीं, सख्ती का मतलब यही जो मैं आपको बता रही हूं, कि इतने मजबूत हो जाओ अपने दीन में कि दुश्मन पे रो बता रही हूं, वो तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करे तुम्हारे दीन के हवाले से, कि तुम टफ हो, तुम ऐसे नहीं हो कि वो, अच्छा वो कहेगा कि चलो आओ हम यहाँ पे चलें और किसी जगह पे जाके वहां पे कुछ ऐसा गलत काम करें, कुछ कहीं किसी मंदिर पे चले, किसी चर्च पे चले, तो आप कहें हाँ हाँ ठीक है,
चलो अब इसने कह दिया तो चलते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया ना कि इंसान के जो करीब वाले होते हैं ना, उनका उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है और वो प्रेशराइज भी करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये है सख्ती कि जहां पे अल्लाह ताला से वफादारी का मामला आ जाता है ना, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अल्लाह ताला चाहता है कि कोई भी रिश्ता है, चाहे चाहे कोई कोई ताल्लुक है, मगर सबसे पहले वफा अल्लाह से होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ नहीं मैं तो इतनी अच्छी गुड मैनर्स वाली हूं कि आप तो जो भी कहेंगे वही मैं कर लूंगी, मैं इतनी हुस्ने अखलाक वाली। ये अखलाक नहीं कि आप दीन पे कॉम्प्रोमाइज करें। आप देखिए ना, वैसे भी करीबी लोगों के अगर आप मिसाल लें तो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे हमें इन्फ्लुएंस करके कह देते हैं कि आपने ये नहीं करना या ये आप करें, तो हम फौरन मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इसमें वो हमारे अंदर सख्ती पाए, उनको भी पता हो कि हमारे माँ बाप ये दीन की बात आती है ना, तो इसमें ये नहीं मानेंगी मेरी बात। ये नहीं हो कि वो ये आपसे उम्मीद रखें, इसका मतलब यू आर नॉट टफ देन। अगर वो आपसे उम्मीद रखते हैं ना कि मैं तो माँ को जिस तरह मर्जी कह लूंगी, जो चार आंसू बहा के दिखा दूंगी और माँ ने मान लिया है, और फिर जो जैसे मैं कहूंगी वैसे चलेंगे और अल्लाह की हदों को तोड़ेंगे और अल्लाह की नाफरमानियां करेंगे और गुनाह में पड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों को आपके अंदर दीन के मामले में पता होना चाहिए कि इसके अंदर दीन के मामले में सख्ती है। ये इस मामले में हमारी बात नहीं, हमारी माँ मानेंगी, ये पहले से ही पता होना चाहिए कि वो आपके सामने वो बात ना रखे। तो इसी तरह काफरों के लिए भी, कि वो आपके इर्द गिर्द कहीं रहते हैं, आपके कहीं करीब हैं, अब वो आपको ये समझते हैं कि ये तो बड़ी नाइस है ना, तो ये इसमें भी इतनी नाइस होगी कि हम कुछ भी कहेंगे तो ये करने को खड़ी हो जाएगी। नहीं, ठीक है, ये है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया वालमुन अल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह ताला जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है, यानी इस मामले में भी तकवा होना चाहिए। चाहे दुश्मन का मामला है ना, यहाँ पे तो एक जंग की बात हो रही है, उसमें भी तकवा। उसमें तकवा कैसे? इसलिए कि उसमें हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स ना आए कि हम किसी से नफरत करते हैं इसलिए हम उसे लड़ना चाहते हैं, नहीं इसलिए नहीं, उसमें भी अल्लाह की जात की खातिर लड़ना, या हम किसी को गुंजाइश दे रहे हैं तो वो इसलिए कि हमें वो पसंद है तो हम उसको जाने देते हैं, नहीं उसमें भी तकवा। आप देख लेना, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हैं कि अपने वालिद से कि आप कितनी दफा उहद में ना, कितनी दफा आप मेरी तलवार की जद में आए लेकिन मैंने आपको जाने दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं कि लेकिन अगर तुम मेरे तलवार की जद में आते तो मैं ना तुम्हें जाने देता। इसलिए कि वो लड़ते अपनी पर्सनल अफिलिएशंस, पर्सनल ताल्लुकात, अपनी अपनी पसंद या नापसंद, अपनी मोहब्बत या नफरत के लिए नहीं थे, सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए करते थे ना। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा किरदार है दोबारा मुनाफिकीन के बारे में आ रहा है। वह इदा मा उन्जिलत सूरत, और जब भी उतारी जाती है कोई सूरत, फमिनहु मन यकुलु अय्युकुम ज़ादतहु हादिही ईमाना, तो उनमें से कोई एक कहता है कौन है जिसका ईमान बढ़ गया इस सूरत से, पहले भी तो ऐसी सूरतें उतरती रही हैं, तो क्या हो गया? यानी एक मजाक का और एक कुराने पाक की कोई अहमियत नहीं थी ना उनके नजदीक, तो उसको एक यानी एक हकारत का अंदाज, एक जिस चीज की इज्जत आपके दिल में ना हो फिर इंसान ऐसी बात करता है कि लो क्या ईमान बढ़ गया किसी का, तो कोई सूरत नाजिल होती तो आगे से इस तरह की बातें करते थे। तो फरमाया फअम्मल्लदीना आमनू फजादतहुम ईमानं वहुम यस्तबशिरून, जो ईमान वाले उनका तो ईमान बढ़ता ही है और वो खुशियां मनाते हैं। वअम्मल्लदीना फी कुलूबिहिम मरद, और जिन लोगों के दिलों में बीमारी है, फजादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, तो उनकी निजासत में और निजासत का इजाफा हो जाता है। वमातु वहुम काफिरून, और वो मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे। अब ये दोनों आयतों में क्या बताया जा रहा है कि जब आयतें उतरती थी ना, जब वही आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि बाज दफा तो लोग मौजूद होते थे, उनकी मौजूदगी में वही आती थी, बाज दफा नहीं कोई होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करा देते थे कि सब लोग जमा हो जाएं और फिर वही सुनाते थे। तो ये लोग जब ये सुनते थे ना कि नई आयत या कोई सूरत उतरी है, तो ये बजाय जैसे ईमान वाले खुश होते थे ना कि हम देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। नहीं, आप सोचें कि एक उम्मे एमन के पास जब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद गए, तो इतना रोई, तो उन्होंने तसल्ली दी उनको। तो वो कहने लगी कि मैं इसलिए इतना रो रही हूँ कि अब वही का सिलसिला बंद हो गया। यानी उनको कितना इश्तियाक होता था कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अब क्या बात आई है, अब क्या हमसे अल्लाह ताला बात करेगा। जैसे आपको शायद होता हो, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कि आप देखते हैं आज के सबक में क्या आता है, क्या अल्लाह ताला हमें नई बात बताता है। तो वो उनके तो सामने कुरान उतर रहा था, उनको तो ये हिरस होती थी, वो तो इतने खुश होते थे कि कुरान आया, नई सूरत आई है। और ये जो मुनाफिक थे, इनका ये हाल था, लो क्या फर्क पड़ गया, लो कौन सा ईमान बढ़ गया। जब देखें सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नमल मोमिनून अल्लदीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब उनके सामने अल्लाह की आयात को तिलावत किया जाता है, तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उनके दिल कांप उठते हैं, उनके ऊपर कुरान का ये असर होता है। और इनके तो अंदर पहले ही निजासत है ना, गंदगी है, तो गंदगी और बढ़ जाती, कुफर और बढ़ गया। हालांकि देखिए कुरान सेम है, इसका मतलब है कि वो ही कुरान सदियों से इंसानों के आगे पढ़ा जा रहा है, 1400 साल से उस वक़्त भी पढ़ा जाता था। चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अकदस से ये कुरान अदा हुआ, लेकिन उनको फिर भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब यानी कुरान सेम है, सेम कुरान है, एक के ऊपर कुछ असर हो रहा है, दूसरे के ऊपर कुछ और असर हो रहा है। क्यों, क्या फर्क है? कुरान में तो कोई फर्क नहीं, आयतें तो वही हैं, उस वक्त भी यही आयतें पढ़ी जाती थी, आज भी यही पढ़ी जा रही है। ना उस वक्त सेम असर था, ना आज सेम असर होगा लोगों को। इतनी बड़ी क्लास बैठी होगी, उसमें हर एक के ऊपर डिफरेंट असर होकर करता है कुरान। और ये किस पे डिपेंड करता है? आपके दिल खुद कैसे हैं, आपके दिल खुद कितने शफाफ है, कितने पाक है, कितने हक को कबूल करने के लिए आमादा है। जहां पे मफादात, ख्वाहिशात, इंटरेस्ट आपके ऐसे हों कि जो कुरान के मुखालिफ है, वहां पे वाकई ये कुरान दिल को तंग करता है। फिर इंसान को अच्छा नहीं लगता इसको सुन के, क्योंकि ख्वाहिशात कुछ है, कुरान कुछ कह रहा है, मफाद कुछ है, कुरान उसके अगेंस्ट कह रहा है, क्यों दिल करेगा फिर सुनने का? जहां पे इंटरेस्ट ही कुछ और है, इंटरेस्ट ही म्यूजिक और फिल्में है, वहां पे कुरान तो उनको दिल में तंगी होने लगती, बोरिंग लगने लगता, क्योंकि अंदर अंदर खराबी है। याद रखिए, कुरान में कोई चेंज नहीं आया, उस वक्त भी सेम, आज भी सेम। उस वक्त भी मुनाफिकीन के अंदर गंदगी थी। जैसे कि एक बीमार शख्स है, आप उसको देसी घी की खुराक देंगे तो उसका मैदा और खराब हो जाता है, वो तो नहीं खा सकता, वो तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। सेहतमंद को देंगे, उसको कुव्वत मिलती है, गिजा सेम है। बीमार के लिए बीमारी में इजाफा कर दिया, सेहतमंद के लिए सेहत में इजाफा कर दिया। तो अहले ईमान के लिए तो रहमत है, शिफा है, मगर दूसरों के लिए खसारा, वो कुफर में बढ़ गए। अल्लाह अकबर। तो याद रखें एक बात, हम सोचते ना मुनाफिक वो है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान है, उसको मुनाफिक कहते हैं, ऐसा नहीं है। मुनाफिक वो है कि जिसमें कोई ईमान नहीं होता, वो पक्का काफिर होता है, वो किसी शायर ने कहा ना, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, जर्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। तो अपना जर्फ ही अगर नहीं है, तो कुरान भी पढ़ जाए ना, तो कुरान भी बदलता नहीं है। इसीलिए वो कहते ना, ओ फलां कुरान भी पढ़ती है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं। कुरान कुरान तो वही है, उसने सहाबा कहाँ वो दौरे जाहिलियत से निकाल के कहाँ रदी अल्लाह अनहुम बना दिया, कुरान वही है, हम हैं जिनके अंदर खराबियां इतनी हैं, हम हैं जिनके अंदर ख्वाहिशात और मफादात ऐसी, उनके ऊपर उनमें हम ऐसे गर्क हैं ना, और उनकी इतनी हमारे अंदर शदीद ख्वाहिश और इतनी उनकी तरफ हमारा खिंचाव है कि हम अंधे हो गए, हमें फिर कुरान असर नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए दुआओं की भी जरूरत है, इसके लिए अपने दिल को साफ करने की भी जरूरत है। इसमें इसमें हक की कबूलियत के लिए आमादगी होनी चाहिए कि जो मैं सुनूंगी मैंने इसको कबूल करना है। ये नहीं कि जो सुनूंगी बस ठीक है सुन लिया, आज एक क्लास हो गई, ए वन मोर क्लास, वन मोर स्टेप क्लोजर टू सर्टिफिकेट, ये नहीं होना चाहिए। आज मेरे रब ने क्या फरमाया, मैं इसको ले लूं, मैं इसको अपने अंदर जज़्ब कर लूं, ये होना चाहिए। पैशन, शौक होना चाहिए, भाग भाग के आज देखती हूँ आज अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, फिर उन चीजों को लेके अपने अंदर समोने की कोशिश करें। उस रास्ते में कोई ख्वाहिश रुकावट बने तो उस ख्वाहिश को गिरा दें, कोई इंटरेस्ट कोई मफाद आए तो उसको गिरा दें। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो इसी वो कुफर बढ़ता जाता है उनका, इसी तरह बातें बनाते रहते हैं और कुफर बढ़ता जाता है। अब देखिए ना, वो बारिश की मिसाल दी है ना, वही से वही को बारिश से मिसाल दी गई भी ना, तो वाकई बारिश भी जो जब जमीन अगर वाकई वो जरखेज है ना, तो उसमें से फल और सब्जा उगेगा, और अगर जमीन गंदी है ना तो उसमें से फिर कीचड़ ही पैदा होगा, और अगर वहां पे कूड़ा करकट है तो उसमें से स्मेल ही उठेगी। आपने देखा है गार्बेज के ऊपर पानी डाल दें, बारिश हो जाए तो स्मेल उठती है, कितनी गंदगी और बढ़ जाती है। तो इनका भी ये हाल है। अल्लाह ताला इससे हम सबको महफूज रखे। तो हम अपने आप को भी देखें कि कुरान का हमें कितना शौक होता है, कुरान हमारे दिल की, जब कुरान की बारिश पड़ती है तो हमारे दिल की क्या हालत होती है, दिल घुटता है, बेजारी होती है, या शौक और बढ़ता है, या ईमान और बढ़ जाता है, क्योंकि ईमान वालों का तो यही हाल है, और इससे दूरी हमें गवारा नहीं होती। इसलिए ही तो हजरत उमर की दुआ है ना, कि उनकी दुआ आती है वरजुकनी तिलावत हु आना लैली व आना नहार हो ना, अल्लाहुम्मा दक्किरनी मिनहुमा नसीत वअल्लिमनी मिनहुमा जहल, तो अल्लाह ताला जो मैं इसमें भूल जाऊं अल्लाह मुझे याद दिल करा देना, जो कुछ मुझे जो मुझे नहीं पता अल्लाह जिससे मैं जाहिल हूँ अल्लाह तो मुझे इसको इल्म दे देना, अल्लाह मुझे तौफीक दे दिन और रात की घड़ियों के अंदर मैं इसकी तिलावत करूँ। वजाल हुली हुज्जत या रब्बल आलमीन, अल्लाह इसको मेरे लिए हुज्जत बना देना मेरे हक में। अल्लाह अकबर। अवला यरून अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन, क्या भला नहीं वो देखते कि वो आजमाए जाते हैं हर साल एक दफा या दो दफा आजमाइशों में डाले जाते हैं, यानी ये मुनाफिक आजमाए जाते हैं, इनके ऊपर आजमाइशें आती हैं, आजमाइशें आसमानी भी, कोई आफत आ सकती है, कोई बीमारी, कोई माली परेशानी, कोई ये भी सूरत में हो सकती है। फिर उनका हाल क्या होता है, तुम मला ये तो ना वाला हम यदत कर, फिर उनका हाल ये होता है कि ना तो वो तौबा करते हैं और ना ही वो नसीहत पकड़ते हैं कि ये मेरे ऊपर जो आई है तो क्यों आई है ये मेरे ऊपर, कि मेरे क्या गुनाह होंगे, अपनी कोई फिक्र इसलाह की वो नहीं करते। अच्छा, अब आजमाइशें तो मोमिनों पे भी आती हैं, मुनाफिकों पे भी आती हैं, क्या फर्क है, फर्क ये रिएक्शन का बताया गया। मोमिन भी बीमार होता है, उसके ऊपर भी परेशानी आती है, कई दफा लोग सवाल करते हैं अब बताएं हमारे ऊपर ये क्या मतलब, ये हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है, जो हमारी बीमारी या कुछ ऐसे मसला आया है, वो हमारी आजमाइश है या हमारे गुनाहों की सजा है। तो ये देखे ना, ये यहाँ पे हमें पता चला कि जो मुनाफिक है उसके तो गुनाहों की सजा है, और वो फिर भी सोचता नहीं कि मैं तौबा कर लूं, दूसरे के लिए आजमाइश है। मोमिन क्या करता है, वो तौबा कर लेता, वो अपने आप को इस चीज से सबक लेने का जरिया समझता है कि मैंने ये मेरे ऊपर मसला है ना, इसमें मेरे लिए क्या सबक है, इसमें मेरे लिए क्या अल्लाह ताला मुझे बताना चाह रहा है, मुझे अल्लाह ताला पता नहीं कौन सी चीजें हटाना चाह रहा है, मुझे अल्लाह बताना चाह रहा है मैं ये गुनाह छोड़ दूं, मैं तौबा करता हूं, तो उसके लिए ये रहमत है, ये मुसीबत भी उसके लिए, ये एक दर्जात की बुलंदी का जरिया है। और दूसरे के लिए एक सजा है। वो तो देखिए उसमें भी इतनी मुसीबत में पड़ के भी अब पेंडेमिक आया, बहुत सारे लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार भी की और बहुत सारे लोगों ने ऐसी परवाह भी नहीं की, सोचा भी नहीं कि ये क्यों आई बीमारी, ये क्यों ऐसे हमें हिला दिया गया। तो फरमाए इस हाल में एक दफा दो दफा ऐसे हालात आती है, ये आजमाए जाते हैं, कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, कभी इंसान के अपने घर में आ जाती है, कभी पूरे पूरे इंसानियत उसकी लपेट में आ रही है। एंड फिर भी सोचें इतनी बड़ी चीज हमारे ऊपर से गुजरी, लेकिन कम ही लोगों को ये रियलाइजेशन हुई कि इससे नसीहत लें और या तौबा इस्तग़फ़ार करें। और ये मुनाफिकीन का किरदार होता है कि वो नहीं करते तौबा, उनको नहीं फर्क पड़ता। मुनाफिक की मिसाल ऐसे दी गई ना कि वो जैसे एक जानवर को बांध दिया या खोल दिया, उसको पता ही नहीं मुझे क्यों बांधा गया, मुझे क्यों खोला गया, मुझे क्यों आजमाइश में डाला गया, मेरे से क्यों आजमाइश दूर की गई, मुझे तो पता ही नहीं। बस ये आबादी से दुनिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से सहाबी ने पूछा ये जलजले क्यों आते हैं, फरमाती हैं कि लोग जब बदकारी में मुब्तला हो जाते हैं, मौसीकी के दिलदादा हो जाते हैं, म्यूजिक फैन और शराब सरेआम पी जाने लगती है, तो अल्लाह ताला को गैरत आ जाती है, फिर वो जमीन को हुक्म देता है कि तू हिल जा, अगर ये लोग वापस आ जाए तो ये बच जाते, और अगर वापस ना आए तो हो सकता है जमीन उनके ऊपर उल्टा के गिर जाए, गिरा दी जाए। तो साहबी ने पूछा कि ये इंसानों पर अजाब की एक कैफियत है, यानी ये अजाब है क्या? तो सताशा रजी अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये सब के लिए अजाब नहीं है, सजा नहीं है, ये मुनाफिकों और काफिरों के लिए तो सजा है मगर मोमिनों के लिए नसीहत है और रहमत है। क्यों? इसलिए कि वो इससे सीखते हैं, वो अपने आप को सही कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शन सही कर लेते हैं, वो सीधे हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वो सीधे हो जाते हैं, जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा है एक थप्पड़ पड़ा सीधा हो गया, ठीक है? तो उनके लिए इस तरह होता है कि वो इससे सीधे हो जाते हैं, एक डांट पड़ी सही संभल के बैठ गए तो वो संभल जाते हैं, जबकि दूसरे वो इग्नोर कर देते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उतनी भी डराने वाली बात आ जाए, कितने भी मसले आ जाए, उन्होंने सुनी अनसुनी कर देनी। वइदा मा उन्जिलत सूरत नज़र बादुहुम इला बाद, और जब नाजिल की जाती है कोई सूरत तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभी अभी मुनाफिकीन का किरदार, हल यराकुम मिन अहदिन, क्या देखता है तुमको कोई एक, सुम मनसरफू, फिर वो मुंह फेर जाते हैं। अब ये इसके अंदर एक तो ये बात है, जब मुनाफिकों के सामने आयतें उतरती थी जिसमें उनका किरदार खोला जाता था, उनके पोल खुलते थे, तो समझ ले उनके मुंह पे मारी गई ना, पता तो चल जाता था कि हमारी ही बात हो रही है, असल में तो हम ही ये करते हैं, तो एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखते थे कि देखो जरा क्या कहा जा रहा है। और ये भी बात है कि जब बुलाया जाता था कि आओ आके सूरत नई नाजिल हुई है तो आके सुन लो, तो ये बददिल लोग के आते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं था, आ तो जाते थे, अब आना तो पड़ता था जाहिर ही बात है, अब मारे बांधे के आए हैं और उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखते थे कोई देख तो नहीं रहा, तो खिसक जाओ, अब अपने अपनी हाजिरी तो लगवा ली ना, बहुत सारी जगहों पे हम भी हाजिरी लगवाने सिर्फ जाते हैं ना, हाजिरी लग जाए जी, सिर्फ लोग देख लें कि मैं आई हुई हूँ, तो कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कोई हमने किसी की अफसोस करना है या किसी की खुशी में शामिल होना है, बस हाजिरियां लगने का, हमें हाजिरियां लगवाने का बड़ा ही शौक है, तो इस तरह वो भी हाजिरियां लगवाने के लिए आते थे, तो जब देखा कि कोई नहीं देख रहा ना तो फिर मुंह फेर लेते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो मुंह फेरते हैं, इनको क्या पता कि सरफ अल्लाह कुलूबहुम, अल्लाह ने इनके दिलों को ही फेर दिया, वे अन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये कौम है जिसको समझ ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि उतर क्या रहा है, इनको पता ही नहीं ये चीज क्या है, आज भी जो जो ये इससे मुंह फेरता है ना, कहता है मुझे नहीं कुरान की जरूरत, मेरे पास नहीं टाइम, असल में वजह पता है क्या है, अन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, दे डोंट नो, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग, इनको पता ही नहीं कि ये है क्या खजाना जो इनको दिया जा रहा है और ये उसको लेना ही नहीं चाहते, अगर पता हो ना तो यकीन करें एक लम्हा भी ना लगाएं वो इसके इससे जुड़ने के लिए, इसको जान से अजीज रखने के लिए, लेकिन उनको इसकी वैल्यू ही नहीं पता थी, तो वो अपने उठने को अपना समझते थे, देखो देख तो नहीं रहा कोई, इसमें कामयाबी समझते थे, आंख बचा के हम उठ के आ गए, किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन इनको क्या पता,
ये मुंह फेरेंगे क्या, अल्लाह ने ही फेर दिया इनके दिलों को, क्योंकि इनके अंदर समझ ही नहीं है, इनको वैल्यू ही नहीं पता। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह ताला मुनाफकत से महफूज रखे हमेशा। अच्छा अब ये जो दो आयते हैं ना, इनके ऊपर मैं एक तरफ टाइम देख रही होती हूँ और एक तरफ मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, क्योंकि टाइम इतना हो गया है। ये जो दो आयते हैं इनके ऊपर अलग से क्लास हो सकती है, ये इतनी खूबसूरत आयते हैं, इतनी खूबसूरत आयते हैं कि मैं ये जो पहली आयत है ना इसके ऊपर मटेरियल देखने लगी तो मेरे पास इतनी किताबें थी उसके ऊपर कि मैंने कहा मैं कैसे आपको ये दे सकती। कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसके ऊपर ही एक दर्स करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की सिफात बताई है, अपने नबी के बारे में बताया कि मेरा नबी कैसा है, और तुम्हें तो पता नहीं इस नबी की कदर ही नहीं है कि ये नबी है क्या। जब रब किसी की गवाही दे दे ना तो फिर उसे सच्ची बात क्या हो सकती है। देखिए एक मैं आपको सोचूं या आप मुझे सोचें, पता नहीं मुंह से तो लगता ही है कि बड़ा हमसे मोहब्बत करती है, पता नहीं करती भी है कि नहीं करती, पता नहीं लगता तो है कि बड़ी खैर ख्वाह है, लेकिन अल्लाह जाने दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता, क्या पता है भी कि नहीं है, लेकिन हम डाउट कर सकते हैं ना किसी को भी। पर जिसकी तो अल्लाह ताला तारीफ कर दे इस कुरान में, जिसकी तो अल्लाह ताला बता दे इस कुरान में कि वो कैसे हैं, उनके तो कोई शक रह ही नहीं गया, कोई शक रह ही नहीं गया उनकी इन सिफात में कि वो कैसे थे। तो अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि मेरे नबी कैसा है, फरमाया लकद जाअकुम रसूलुन, वो लोगों अलबत्ता तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक रसूल। रसूल उन से का मतलब क्या है, तनवीन आई है ना कि एक रसूल जिसका जिक्र सारी किताबों में पहले आया था, ये उसने आना है, वो आ गया है। तो जिनकी आमद एक्सपेक्टेड थी वो पूरी हो गई, उनकी पेशी गोई। मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अपनी नफ्सों में से है। सबसे पहले अवलिय मुखातिब तो अरब थे ना, तो फरमाया तुम अरबों में से ही है वो, और ये भी पता चल गया कि वो कोई और मखलूक नहीं है, कोई नूरी मखलूक, कोई और मखलूक नहीं है, वो बशर ही है, तुम्हारे ही जैसे इंसान है, मगर कामिल इंसान है ना, बाकी इंसान नाकिस है, वो कामिल है, ये फर्क है। तो वो तुम में से है, इंसान है, उनको इंसान ही समझो, उनके साथ भी वही जरूरियात है, वही एहतियाजात हैं, वही गमी खुशी की चीजें हैं जैसे बाकी इंसानों के साथ हैं, जैसे बाकी इंसानों को थकावट होती है, मुशक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई गम, उनके साथ भी ऐसी चीजें हैं। यही तो बड़ी बात है, वो अजीजुन अलैहि गरां गुजरती। अजीज कहते हैं वो जो मुशक्कत वाली चीज हो, वो जिस जो इंसान को मغلوب कर दे, वो चीज उनके ऊपर, यानी भारी, जिसको कहते हैं ना ये चीज मेरे ऊपर बड़ी भारी है, वो वजन नहीं होता, वो वैसे भारी लगती है। हसीजुन अलैहि मा अनितुम, ओ सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह ने हमें कैसे नबी दिए कि उनके ऊपर भारी है जो चीज तुम्हें तकलीफ देना उनसे, यानी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी उम्मत को तकलीफ पहुंचे, उनके ऊपर भारी गुजरती है, उनके ऊपर तकलीफ नहीं आ रही, वो तुम पे जो तकलीफ होती है ना वो उनके ऊपर भारी गुजरती है, उनका ऐसा ऐसी उनकी सिफत है, यानी उनकी तस्वीर कशी की गई कि वो कैसे हैं। हमने उनको देखा तो नहीं, लेकिन ये पढ़ के हम सोच सकते हैं कि वो कैसे होंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, यकीन करें आप पैसा पानी की तरह बहा भी देना, आप कुछ भी कर ले, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं डाल सकते। कोई बात ही होती है कि किसी की मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ही ऐसी थी कि जो लोग फिदा होते थे ना आपके ऊपर, कि वो आप बाबा क्या पढ़ते हैं, वो औरत आई उसका बाप शहीद हो गया, उसका भाई शहीद हो गया, उसका शोहर शहीद हो गया, उसको लोग कह रहे हैं भाई फलां शहीद, वो कह रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, आप अगर आप ठीक हैं तो बस सब ठीक है, क्यों ऐसे उनको फील होता था। इसलिए कि आप में एम्पथी थी, यानी एम्पथी मतलब क्या कि आप दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करते थे, आप दूसरे के रंज को अपना रंज बनाते थे, आप दूसरे के दर्द को महसूस करते थे। ये दुनिया में बहुत ही कम होता है किसी के साथ कि कोई आपको इतना मुखलिस मिल जाए कि आपका दर्द वो अपना दर्द बना ले, आपकी खुशी को अपनी खुशी बना ले। लोग तो खुशी किसी की होती है जल जल के बुझ जाते, चाहे सामने मुबारकबाद देते लेकिन वो अंदर उनके कितना तूफान होता है। तो ये बड़े ही मुखलिस लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं कि किसी की भी जो भी उसके ऊपर गुजर रही वो अपने ऊपर ले ले, ऐसे ही नहीं वो कुर्बान जाते थे। अब क्यों ये बात को समझते नहीं है कि जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी को ले लेके अपने ऊपर उसके लिए लड़ रहे हैं, जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि मैं वुजू का पानी आपका ले लूं। वो ऐसे ही नहीं मोहब्बत थी, वो आपकी वाकई शख्सियत ही ऐसी थी, वो आपकी सिफात ऐसी थी, वो आपका लोगों के साथ जो तर्ज़ अमल था उसकी वजह से लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत थी आपके लिए कि वो पानी का कतरा जमीन पे गिरने नहीं देते थे। ये अलग बात है, हाँ ठीक है ईमान था, मगर ये देखिए मोहब्बत एक अलग चीज होती है, और ऐसी मोहब्बत की अपनी जान से भी ज्यादा। तो ये इंसान का देखिए अपना बस नहीं होता मोहब्बत पे, आपको भी पता है ये इंसान का बस नहीं होता। ये मोहब्बत वाकई किसी ने कह के नहीं अपने अंदर पैदा करनी होती, अच्छा मैं इसे मोहब्बत करना शुरू कर दूं क्योंकि ये अल्लाह के रसूल है, ऐसे नहीं होती। ये जो उनके साथ रहे वो उनसे ज्यादा कौन जान सकता है कि उनकी शख्सियत क्या थी जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर फिदा हो गए, लोग उनके ऊपर फिदा हो गए कि उनको अपनी हर चीज से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हो गए, हर चीज से ज्यादा। तो उनके ऊपर भारी है कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। देखिए ये जज्बा किसके साथ होता है दुनिया में, किस ताल्लुक में ये जज्बा होता है? माँ के ताल्लुक। माँ जो होती है ना वो हर हाल में चाहती है मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई कांटा भी ना चुभे उसको। मगर आप सरसलम माँ से भी बढ़ के, जानते हैं क्यों? इसलिए कि दुनिया की अक्सर माएं बच्चों का सिर्फ वक्ती दुनिया का नुकसान देख के कुड़ती हैं और चाहती हैं ये ना उसको। वो कहती हैं कि मेरे बच्चे को इस जिंदगी में कोई तकलीफ ना पहुंचे, वो बड़ा आदमी बन जाए, उसका बड़ा घर हो, उसके नौकर चाकर हो, उसका ये दुनिया के मसले उसके कोई ना रहे। अक्सर को यही फिक्र होती है, बस उसकी कब्र में आग भरे, वो जहन्नुम के अजाब में झोंका जाए, वो ये इस तरफ ध्यान ही नहीं होता उनका, सोच ही नहीं जाती उनकी। अक्सर माओं की वो तड़पती हैं तो अपने बच्चे की यहां की तकलीफ के लिए तड़पती हैं कि इसको मैं कुछ ही चीज के लिए सुबह को जल्दी भी ना उठाऊं, कहीं इसको तकलीफ ना हो जाए मेरे बच्चे को। तो उनको सारी जो कॉन्सेंट्रेटेड है ना उनकी तवज्जो बस यहां के लिए। लेकिन मेरे नबी ऐसे हैं कि जिन्होंने इंसानियत की उस तकलीफ को बचाने के लिए इंतजाम किया जो हमेशा की है, और जिससे बड़ी तकलीफ नहीं कोई हो सकती, जिससे बड़ा अजाब नहीं कोई हो सकता, उससे बचाने का उनको रास्ता बताया, उनको उनके रब से जोड़ा, उनके मालिक की पहचान कराई, उनको जन्नत का रास्ता दिखाया, उनको दीन पहुंचाया, चाहे खुद पत्थर खाए हैं, चाहे खुद लहूलुहान हो गए, चाहे खुद अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ गई है इस रास्ते में, लेकिन उनकी हरीस सुनाली को, वो हरीस थे तुम्हारे बारे में, इतनी हिरस क्या होती है, हिरस शदीद ख्वाहिश को कहते हैं कि हर वक्त दिल में जिस चीज का रहे ना, इंसान का दिल ही उसमें अटका रहता है। कहते हैं ना इसको माल की बड़ी हिरस है, ये तो पैसे का बड़ा हरीस है, ये तो किसी को माल की होती, किसी को कपड़ों जेवर की हिरस होती है, वो हर बात उन्हीं में। आप सरसलम की हिरस क्या थी? सुभान अल्लाह, उनकी हिरस ये थी कि ये इंसानियत आग के अजाब से बच जाए। उनकी हिर्स ये थी, उनको इस चीज की शदीद ख्वाहिश थी। कितनी खैर ख्वाही एक इंसान के अंदर होगी, इमेजिन करें कि जिसके दिल में दर्द ही इस वजह से है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, ये इंसानियत बच जाए आग से। इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है उनकी खैर ख्वाही की और उनके खुलूस की। इसलिए उनका एहसान हमारे पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एहसान। हम तो इस एहसान को कभी भी चाहे भी तो हम कितना भी दरूद पढ़े, हम उनके इस एहसान को कभी नहीं दे सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये, ताकि मेरी उम्मत कहीं किसी कोई कोई मुश्किल ना हो उनको, वो हरीस थे तुम्हारे लिए कि हर खैर इनको मिल जाए। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, जिनको जिनकी तो सोचे कि कितना उन्होंने गम बना लिया था इसको, कि अल्लाह ताला को फरमाना पड़ा कि अल्लाह का बाकी नफ्स का सारी इलाम भी हाजिल हदीस या सब है। तो आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इनके पीछे, कि ये नहीं मानते, यहूदी का जनाजा जा रहा है तो आप सरम की आंखों में आंसू है कि ये एक और शख्स था जो हिदायत के रास्ते पे मैं नहीं ला सका। तो काफरों ने कहा आप सफा पहाड़ी को सोने का बना दे, हम ईमान लेंगे। आप सजन को इतनी हिरस थी कि आए ये ईमान ले आएंगे, दुआएं करने लगे, अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। अगर आपकी ये चाहत है कि ये सफा पहाड़ी सोने की बना दे तो हम बना देते, लेकिन अगर ये फिर भी इनमें से किसी ने कुफर किया तो इनको वो अजाब, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इनको वो अजाब दूंगा कि किसी को नहीं दिया हो। और अगर आप चाहें तो हम सफा पहाड़ी तो नहीं सोने की बनाते, मगर इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला रहने देते, कि ये जब तौबा करेंगे, जब तक जान नहीं निकल जाती उस वक्त तक अगर ये तौबा करें तो अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाजा इनके लिए खुला रखेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफा पहाड़ी नहीं चाहिए, मेरी उम्मत के लिए तौबा का दरवाजा खुला रहे। अब उसके बाद उन्होंने कितने ताने दिए वो आप तो सोच ही नहीं सकते, कि देखो हमने तो इनको कहा दे के बना दे, हम ईमान ले आते, देखो नहीं बनाई ना। अब उनके ताने सुन लिए, लेकिन उनको नहीं पता कि ये हमारे कितने खैर ख्वाह हैं। अब देखिए हमें तो 50 नमाजें पढ़नी पड़ जानी थी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाके सिफारिशें करते, क्योंकि उनको हमारी जरा भी तकलीफ है ना, वो नहीं उनसे बर्दाश्त होती थी। और तकलीफ का मतलब ये नहीं है कि वो आप सोचें अच्छा जो हमें तो नमाज पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती, असल बात ये तकलीफ वो कि आपको कहीं आखरत में जाके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये तकलीफ। उनकी सबसे बड़ी हिरस ही ये थी कि हम सब बच जाएं आग से, इससे ज्यादा क्या बड़ी खैर ख्वाही हो सकती, तो वालदेन भी नहीं इतनी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल तो उस आदमी की तरह जिसने आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो ये परवाने और कीड़े मकोड़े उस आग में गिरने लगे, और वो आदमी उनको उस आग में गिरने से रोक रहा है, और वो उसके से अपना दामन छुड़ा छुड़ा के वो जाके आग में गिर रहे हैं, वो उनको कमरों से कमर से पकड़ पकड़ के आग से खींच रहा है। तो बस मैं भी तुमको कमर से पकड़ के आग से खींच रहा हूं और तुम इसमें गिर रहे हो, यानी वो इस पे गालिब आके उस आग में गिर रहे हैं, जैसे पतंगे या कुछ है ना, वो आदमी उनको उससे दूर कर रहा है कि ये इसमें गिर जाएंगे, लेकिन वो जा के उसमें गिर रहा है। तो ये भी तुम्हारी मिसाल भी ऐसे ही है, बुखारी की है मुस्लिम की हदीस है कि तुम्हें मैं कमर से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं तो तुम उसमें गिर रहे हो। फिर आप देखें ईशा की नमाज को तहाई रात तक मुअख्खर करने का कर देने का था कि इसको मतलब आप आगे जरा लेट करके पढ़े, तो आपने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पे दुश्वारी का ना होता ना तो मैं उनको हुक्म देता कि ईशा की नमाज को तहाई रात तक मुअख्खर कर दे। फिर इसी तरह मिसवाक का, कि अगर मेरी उम्मत पे दुश्वारी ना होती तो मैं हर नमाज के बाद मिसवाक का हुक्म देता। कितनी सारी अहादीस ऐसी हैं कि मैं अगर मेरी उम्मत पे ना मुश्किल होती। अब वो पता है कि ये तहज्जुद की नमाज भी, तहज्जुद कह रहे हैं अस्तग़फिरुल्लाह, जो जो तरावी है रमजान में, इसकी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ाई, उसके बाद क्यों नहीं पढ़ाई? सहाबा इंतजार कर रहे हैं कि आप आए तशरीफ लाए और हमें आकर नमाज पढ़ाए, आप नहीं आए। बाद में क्या बताया, मुझे ये डर था कि कहीं ये नमाज फर्ज ना कर दी जाए इसलिए मैं नहीं आया। तो फिर इसी तरह फरमाया विसाल के रोजे रखना, यानी बगैर सहरी किए रोजा शुरू कर देना, तो अगले दिन जाके इफ्तार करना, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम नहीं करो ये, अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है, मगर तुम ना ये रोजा रखो। अपनी उम्मत के ऊपर मुशक्कत का खौफ था। इसी तरह ये कि हर साल नहीं हज करना फर्ज, फरमाया अगर तुम एक आदमी ने पूछता जा रहा है ना क्या हर साल फर्ज है, क्या हर साल फर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं दे रहे, बाद में आपने फरमाया अगर मैं कह देता ना तो हर साल फर्ज हो जाना था। वो पता था कि उम्मत को मुश्किल होगी इसमें। तो इतने हरीस हैं अपनी उम्मत के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी के लिए ना एक दुआ है जो उसकी दुआ एक्सेप्टेड, अल्लाह ताला ने उसको श्योर शॉर्ट एक्सेप्ट करना है। तो हर नबी ने अपनी दुआ दुनिया के अंदर मांग ली। आप देखिए कितने नबियों की दुआएं आप पढ़ते हैं। तो मैंने अपनी इस दुआ को कयामत के दिन के लिए अपनी उम्मत की शिफात के लिए रख लिया, तो मैं उस दिन अपनी उम्मत के लिए दुआ करूंगा। तो अब आप देखें कि वो भी कह सकते थे दुनिया के अंदर कोई कोई मसलों के हल, कोई आसाइशें, कोई चलो जंगों के अंदर ही कोई फतह मांग लेते और अपनी दुआएं वहीं पे कबूल करा देते, लेकिन आपने ये नहीं किया और इस दुआ को अपनी उम्मत के लिए रख दिया। बिल मुमिनीन रऊफ और रहीम। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो पहली बातें हैं ना, ये अजीज नाले मा अनितुम और हरीस अलैकुम, ये तो सब के लिए, सब के लिए। लेकिन जो बिल मोमिनीन रऊफ और रहीम है, ये मोमिनों के लिए, ये मोमिनों के साथ इतनी शफकत करने वाले, इतने रहम करने वाले। वो शफकत राफत, वो शफकत होती है जो बाप को अपने बच्चे से होती है। तो और ऐसी रहमत जो कमजोर के साथ की जाती है। अल्लाह ताला भी रऊफ और रहीम है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इन्हीं सिफात को दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोमिनों के साथ ऐसे ही हैं। अब इसकी अगर कोई मिसालें देना शुरू करूं ना तो पूरा दिन गुजर जाएगा, वो मिसालें खत्म नहीं होंगी। इतनी मिसालें कि कितने आप शफीक थे, कितने आप मेहरबान थे उन लोगों के लिए जो सोसाइटी के बहुत ही पिसे हुए और धुतकारे हुए लोग थे, जिनको लोग कोई वैल्यू नहीं देते थे। आप देखिए किसी बड़े को बिठा दें अपने साथ सोफे पे या अपने गाड़ी में, वो इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है वो आपके जैसा या आपसे भी बढ़ के था, तो आपने उसको उसके साथ बड़ी मेहरबानी की थी और करनी भी थी। लेकिन ऐसे किसी के साथ जिसको माशरे में कोई मकाम ना देता हो, जिसको माशरे के अंदर कोई पूछता भी ना हो, ऐसे लोगों को भी उनके साथ शफकत और मेहरबानी का मामला करना बहुत बड़ी बात है। और किसी की मुसीबत के ऊपर दिल पसीज जाना ही बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो सारे ही रोते हैं, किसी और के गम में रो देना ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या आप और ज्यादा बात कहेंगे कि नमाज पढ़ा रहे होते ना, किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, आज हमारी मस्जिदों में देख ले अगर कभी आ जाए आवाज, तो उसके बाद वो लेक्चर होता है, वो बुरा भला कहा जाता है कि वो माँ दोबारा कभी मस्जिद में बच्चा ना लेकर आए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उनको नहीं डांटते थे, आप नमाज को मुख्तसर कर देते थे कि एक माँ को मुश्किल हो रही। कितनी मैं बता रही ना, कितनी एम्पथी थी कि यानी किसी का, किसी की मुश्किल को खुद महसूस करना। अल्लाह अकबर, काश ये दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान पाती तो कभी उनके ना कार्टून बनाती, ना उनके ऊपर ऐसे तान करती, ना ऐसी इल्ज़ाम तराशियाँ और ऐसी बातें करती उनके बारे में। काश इनको पता चल जाए कि वो कैसे थे। इन तबल्लो, अल्लाह ताला क्या फरमाता है अपने नबी को, ए नबी इतने, ये इतनी प्यारी शख्सियत, अगर फिर भी इन लोगों को इनकी कदर नहीं है, फिर भी ये मुंह मोड़ते हैं आपसे, फिर भी ये आपकी बात ही नहीं सुनते, हालांकि ये नबी ऐसे हैं, तो आप क्या कहें, हसबी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी, अल्लाह है ना मेरे लिए बस। तो ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इबादत के लायक मगर वही, हले तवक्कल, तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया। फिर आप छोड़े इनको, इनकी नहीं, इनके लिए ना घुटे, ये फिर भी आपको आपकी बात ही नहीं सुनते, आप इनके लिए घुले चले जा रहे हैं, आप इनके लिए अपने आप को हलकान कर रहे हैं और ये मुंह मोड़ते जा रहे हैं, तो छोड़े आप कहें हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु। और ये हर ऐसे इंसान के लिए बड़ी जबरदस्त दुआ है, जिसकी कोई दिल दुखाए या जिसका कोई को परेशान कर रहा हो या जिसका कोई अहमियत ना दे रहा हो या जिसको कोई सता रहा हो, तो हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कल, मैंने उसके ऊपर भरोसा किया।
اور وہ ہوا رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، عظیم صفت ہے عرش کی، اور اللہ تعالی اس عرش کا بنانے والا جس کا عرش ہی عظیم ہے وہ کتنا عظیم ہوگا. اب اللہ تعالی کے عرش کا اندازہ آپ اگر لگائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی عرش کتنا بڑا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کیسا ہے، آپ کو تھوڑی سی بات بتاتی ہوں کہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے نا، کرسی کرسی عرش سے سمجھیں چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ایپ میں لے مین لینگویج میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو کرسی ہے نا اللہ تعالیٰ کی عرش کی، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ کائنات کے مقابلے میں کیسی، کائنات سے مطلب پتہ ہے کیا ہے، یہ آپ اپنی چھوٹی سی نقطے برابر بھی نہیں ہے آپ کی زمین، اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم ارتھ پہ رہتے ہیں تو کیا ہم کارنامہ ہے، ہمارا تو یہ پورا نظام شمسی، یہ پورا سولر سسٹم ہے نا، یہ بھی ایک نقطے کی طرح ہے، اتنی بڑی گیلیکسی میں، اتنی بڑی گیلیکسی جو ہماری ملکی وے ہے اس میں ایک نقطے کی طرح ہے. اور کل میں آپ کے لیے جب یہ پریپیئر کر رہی تھی تو سبحان اللہ، ایک تو میرا انٹرسٹ بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے، تو میں دیکھنے لگی کہ کیسی اللہ کی کائنات کی وسعت ہے، تو اس کے اوپر میں سرچ کیا تو وہ سائنسدان کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم جان نہیں سکے کہ یہ کائنات کا اینڈ کہاں ہے، اس کی وسعت کتنی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو جتنا ہمیں بتایا گیا نا، وہ کہتے ہیں یہ آبزرویبل یونیورس ہے، یعنی جتنا ہم دیکھ سکیں، اس سے وہ کہتے ہیں 250 ٹائمز بڑا ہے ہمارے گمان کے مطابق، یا اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے یونیورس، ہم نہیں جانتے، مگر یہ آبزرویبل ابھی تک، جہاں تک انسان کی صرف جو اس نے آبزرو کیا ہے صرف وہاں تک اس نے بتایا ہے کہ اتنا ہے. اب اس کے اندر سبحان اللہ انسان کی عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے، کتنی کتنی بڑی گیلیکسیز ہیں، کتنے کئی گیلیکسیز مل کے ایک کلسٹر بنتا ہے، کتنے بلینز بلینز کی باتیں ہوتی ہیں، ٹریلینز کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، 100,000 لاکھ 1,25,000,000 اور یہ تو ہے ہی نہیں کوئی فکر، ٹریلینز آف سٹارز، ایک ملکی وے میں کتنے 100 بلین سٹارز، یہ صرف وہ کہتے ہیں ہم ایک اندازہ لگا رہے ہیں، ہم سے تو گن ہی نہیں سکتے، ہم اتنے ہیں، اتنے ہیں صرف یہ ملکی وے میں، اور یہ کئی ایسی گیلیکسیز مل کے کلسٹر بنتی ہیں، سبحان اللہ اس میں کتنی گیلیکسیز اور کئی کلسٹرز ہیں، اللہ کی شان میں کہتی ہوں انسان کہ اس کی عقل گیو اپ کر دیتی ہے کہ میں نہیں اس سے آگے سوچ سکتا. اور فرمایا جو کرسی ہے نا، کرسی اور اس کائنات کا، اب اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو صرف اپنی زمین اور یہ آسمان نہ سوچیں جو آپ کے اوپر ہے، ہورائزن اپنا براڈ کر کے میری بات کو سمجھیں. کرسی کے مقابلے میں یہ کائنات کتنی ہے، یہ کائنات حدیث میں آتا ہے ایسے ہے جیسے ایک چھلا ایک ڈیزرٹ میں پڑا ہوا، ایک چھوٹا سا آپ رنگ ایک ڈیزرٹ میں رکھ دیں نظر بھی نہیں آئے گا، انسگنیفیکینٹ، گاڑی کھڑی ہو شاید وہ بھی نہ نظر آئے گی، لیکن ایک چھوٹا سا رنگ رکھ دیں تو کرسی کے مقابلے میں یہ کائنات اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی جیسے ایک رنگ رکھا ہوا ہے پورے اتنے بڑے ڈیزرٹ میں. اچھا پھر کرسی عرش کے مقابلے میں کتنی ہے، کرسی اتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں کہ جیسے ایک رنگ ایک ڈیزرٹ میں رکھا، اللہ اکبر، جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا ہے، اتنی چھوٹی تو کائنات ہے، تو پھر اس کائنات کے اندر ہم کہاں ہیں؟ تو انسان بیچارہ پھر کہہ دیتا ہے کہ مجھے میری تو کل جا ہی نہیں سکتی، اللہ تیرا تو کرسی اتنی بڑی، تیری کائنات پہلے اتنی بڑی ہے وہ نہیں ہم پہنچ سکے آج تک، محنتیں کر کر کے بیچارے دیکھتے ہیں ہر روز نئی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، تیری پھر کرسی کتنی بڑی ہوگی، تیرا عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ تیری ذات کہاں، حیرت میں انسان رہ جاتا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ رب العرش العظیم ہے، عظیم رب کا، عظیم عرش کا رب، یعنی کائنات تو چھوڑو یہ تو چھوٹی چیزیں رہ گئی، یہ زمین آسمان تو چھوڑو ان کا تو رب ہے ہی، یہ تو اتنی چھوٹی ہیں،
कहाँ वो अर्श अजीम का रब है, तो यहाँ पे तो दुनिया में किसी छोटे बेचारे वजीर के साथ ही किसी की दोस्ती हो जाए तो उसके जमीन पे पाँव नहीं टिकते, वो इन्हीं ख्यालों में रहता है जी मैं तो, मेरी तो फलां जगह मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, उड़ता फिरता है उसको, फिर किसी की परवाह नहीं होती। और जो उस अर्श के रब के साथ ताल्लुकात बना ले, उसके साथ दोस्ती कर ले, तो फिर उसके तो भाग ही खुल गए। तो वो कहता है मेरा तो फिर भरोसा उसके ऊपर है, उसके ऊपर मैंने अपना मामला छोड़ दिया, मेरे लिए तो वही काफी है ना। तो इसमें अकीदा आ गया, अकीदा कि सारे सारों को मैंने छोड़ दिया, ये क्या चीजें हैं, ये जो जमीन के ऊपर कोई फलां से डर रहा है, कोई फलां की जाके हाजते हैं वहां पे मांग रहा है, कोई वहां पे धागे बांध रहा है, कोई वहां पे सज्दे कर रहा है, ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं, मेरा भरोसा तो मैं तो देख रहा हूं अर्श अजीम के रब की तरफ, तो वो मेरे लिए काफी है। फिर सारे खौफ खत्म हो जाते हैं, सब लोगों से मफाद जो है वो भी खत्म हो जाते हैं, लोगों से उम्मीदें हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, रियाकारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है कि मैंने किसको दिखाना, ये लोग क्या चीज है, मेरा अल्लाह है ना। हो कायनात को आप सोचे इस बात से, आप कभी पढ़ा करें इस सोच के साथ, जो ये मुझे ईमान देती है, ये जो ये नॉलेज है ना, ये जो साइंस की ये फील्ड है, जब भी मैं जितना इसकी गहराई में जाऊं मुझे यही समझ आती है कि अल्लाह तू कितना अजीम है, तू कितना अजीम होगा अल्लाह, तेरी तो ये छोटी सी मखलूक कितनी बड़ी है, वो ही नहीं मेरे दिमाग के अंदर आ रही, अल्लाह तू कैसा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, अर्श अजीम का मालिक, उसका खालिक, उस कैन यू इमेजिन द पावर ही हैज, कितना पावरफुल होगा वो ये जो इस सारे यूनिवर्स को चला रहा है, हम तो इतने से को देख रहे हैं ना, उसको चला रहा है, वो कितना पावरफुल होगा, मैंने तो उसके ऊपर भरोसा कर लिया, अब मेरा कौन कोई बिगाड़ सकता है कुछ, अब मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ करूं, उसने मुझे देख लिया कि मैं क्या कर रही हूं, वो सारी जगह से इंसान को बेनियाज करके एक अल्लाह की तरफ ध्यान कर देते हैं। हम कभी सोचे ना रब्बुल अर्शिल अजीम क्यों कहा गया, और भी चीज, अल्लाह तो हर चीज का ही रब है, तो अर्श अजीम की क्यों बात कही गई, वाकई वो अल्लाह ताला ने इसको अपने हाथ से पैदा फरमाया है और अल्लाह की बड़ी अजीम मखलूक है, तो जब उसकी बात कर दी तो बाकी चीजें तो सारी छोटी छोटी वैसे ही अंदर आ गई, तो फिर क्या इंसान के मसले और क्या इंसान की परेशानी, और कोई चीज बड़ी नहीं है, फिर बस मेरा भरोसा मेरे अल्लाह पे है, वो मुझे काफी है बस, वो तो उसका रब है तो फिर और क्या रह गया। तो अल्लाह ताला हमें इन आयात के ऊपर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी आपने चीजें इसमें सीखी पढ़ी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत ये सूरा थी, मुनाफिकीन का किरदार भी आपने पढ़ा। एक बात जरूर कहूंगी कि देखें हम किसी को मुनाफिक तो नहीं कह सकते, मगर अब आपने बड़ी अच्छी तरह उनकी सिफात पढ़ ली है, अगर आपको कोई ऐसा बंदा लगे जो कि इन सिफात का हामिल है, ये सिफात उसमें है, या मुनाफिकत की जो सिफात है उनके कोई मुशाबे लगे लगे, तो फिर उससे थोड़ी उसकी कंपनी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे लोगों की कंपनी रखनी चाहिए जो सच्चे हैं। ठीक है, मुनाफिक सच्चा नहीं होता, वो झूठा होता है, उसके अंदर बातें कुछ जाहिर कुछ होता है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसी कंपनी से बचें जरूर। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो जाए, अल्लाह ताला इन आयात को अपने अंदर जज़ब करने की हमें तौफीक अता फरमा दे, और अपने प्यारे नबी के जो एहसानात हैं उनके आगे हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर अल्लाह तू हमसे कोई छोटी सी खिदमत ही ले ले, जो इनके मिशन में, जो उनकी जो हिर्स थी, जो उनकी हिर्स थी कि लोग आ जाए इस दीन के ऊपर, अल्लाह उसमें हमारा भी कोई हिस्सा डाल दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.